शिक्षार्थियों, आज हम उच्चतर माध्यमिक स्तर पर रहीम पर बात करने जा रहे हैं। रहीम के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वह यह है कि रहीम ने नीति परक बातें बहुत ही सटीक तरीके से और उदाहरणों के माध्यम से प्रस्तुत की। वे एक ऐसे रचनाकार के रूप में हमारे समक्ष आते हैं जिन्होंने जीवन के अनुभवों को अपने रचना कर्म का हिस्सा बनाया। छोटी छोटी बातें वे कहते हैं लेकिन उदाहरण के माध्यम से उसे पुष्ट करते हैं। और रहीम में लोक संस्कृति, लोक व्यवहार और शास्त्रों का गहरा ज्ञान दिखाई देता है, लेकिन दूसरी ओर उन्होंने इस ज्ञान को सामान्य भाषा में प्रस्तुत किया है, बहुत सहज रूप में प्रस्तुत किया है और दैनिक जीवन के जो हम घटनाएं देखते हैं उसको अपनी रचना का हिस्सा बनाया है। एक और महत्वपूर्ण विशेषता उनके रचना कर्म का है कि उनमें सूक्ष्म अवलोकन है, चीजों को बहुत गहराई से देखते हैं और उसकी अभिव्यक्ति रोचक तरीके से करते हैं। रहीम ने फारसी और संस्कृत में भी काव्य रचना की तथा अरबी और तुर्की भाषा में अनुवाद भी किया, पर मुख्य रूप से वे ब्रज और अवधी भाषा में काव्य रचनाएं करते रहे। दोनों भाषाओं पर उनका पूर्ण अधिकार था, इसीलिए भक्तिकाल के कवियों में तुलसी के बाद रहीम का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। हम इनके कुछ दोहे सोरठा और बरवे को पढ़ेंगे और देखेंगे कि उनका अर्थ क्या है और उसका संदेश क्या है। दोहे को लेते हैं पहले। पहला दोहा है, जो रहीम ओ छो बढ़े तो अति ही इतराए, प्यादे सो फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहते हैं रचनाकार कि जो व्यक्ति किसी कारणवश अपने गुण और सामर्थ्य से अधिक पा लेता है तो वह घमंडी हो जाता है और अपना मूल व्यवहार छोड़ देता है और वह इतराने लगता है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए रहीम ने शतरंज के खेल के माध्यम से इसे अभिव्यक्त किया है। शतरंज के खेल में एक विशेषता होती है कि प्यादे की चाल सामने की ओर के सीधे खानों में एक एक खाने की होती है तथा वजीर सीधे और आड़े तिरछे किसी भी खाने में कितनी भी दूरी तक चल सकता है, लेकिन जब कोई प्यादा एक एक खाना चलते हुए आखिरी खाने तक पहुंच जाता है तो उस खाने में मूल रूप से रहने वाले मोहरे के बराबर हो जाता है, अर्थात उसकी चाल चलने लगता है। अर्थात यदि कोई प्यादा वजीर के खाने तक पहुंच जाता है तो वह वजीर के समकक्ष हो जाता है और वह किसी भी दिशा में चाल चल सकता है। अब इस उदाहरण को देखिए, रहीम ने क्यों लिया। रहीम कहते हैं कि यदि किसी साधारण व्यक्ति को किन्हीं कारणों से कोई ऊंचा पद मिल जाता है तो वह उतना ही इतराने लगता है जैसे कि शतरंज के खेल में प्यादा फर्जी बनते ही टेढ़ा मेढ़ा चलने लगता है। अर्थात जब किसी व्यक्ति को उसके गुण शक्ति और सामर्थ्य से बढ़कर कुछ अधिक पद या पैसा मिल जाता है तो वह अपने सहज स्वभाव को छोड़ देता है, वह घमंड से भर जाता है, सीधे मुंह बात भी नहीं करता। तो इस तरह से आप देखें कि एक बड़े संदेश को, और यह आम जीवन में भी शिक्षार्थियों आपको देखने में आता होगा कि बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जिनको अगर पद मिल गया तो वो अपने छोटे लोगों से बात नहीं करते, अगर बहुत पैसा आ गया तो वो गरीबों से बात नहीं करते। उस बात को कितने सरल तरीके से यहाँ प्रस्तुत किया है, यह काबिले तारीफ है। इसी तरह से दूसरा दोहा लेते हैं, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो लगे बढ़े अंधेरो होए। अब यहाँ देखें श्लेष अलंकार के माध्यम से दीपक और कपूत इन दोनों की तुलना की गई है। घर में कुपुत्र अर्थात अगर नालायक बेटा बचपन की हरकतें करता है तो वो अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर बड़े होने पे वैसी हरकतें करें तो वो दुखदाई हो जाता है। इसी प्रसंग को यहाँ पे उन्होंने प्रस्तुत किया है। यहाँ पे एक दीपक का संदर्भ लिया गया है। भारतीय संस्कृति में हम दीपक को बुझाना नहीं कहते हैं, दीपक को कहते हैं कि उसे बढ़ाना, दीपक को बढ़ाना बोलते हैं। उसी तरह से दिया जलाना की जगह दिया बालना का प्रयोग करते हैं, तो उसी का यहाँ पर प्रयोग रचनाकार ने किया है। रहीम कहते हैं कि दीपक की और परिवार में उत्पन्न कुपुत्र की गति एक समान होती है। जिस प्रकार दीपक के बालने पर प्रकाश फैलता है अर्थात वह प्रसन्नता का कारण होता है और बढ़ जाने पर अंधेरा हो जाता है, उसी प्रकार व्यक्ति को असमर्थ और असहाय बना देता है और वह दुख का कारण बन जाता है। जैसे मैंने बताया कि बाल्यकाल में बहुत सारी ऐसी हरकतें बच्चों की होती हैं जिससे माता पिता प्रसन्न होते हैं, लेकिन बड़े होने पर वह बहुत ही कष्टकारी हो जाता है। तो इसी तरह से सामान्य उदाहरण के माध्यम से एक श्लेष अलंकार का उदाहरण देकर उन्होंने दो चीजों में समानताएं दिखाई हैं। उजाले और अंधेरों से क्रमशः सुख और दुख का अर्थ प्रतीत होता है, और इस भाव को कि सुपुत्र किस तरह की ज्ञान की स्थिति होनी चाहिए वह जरूरी है, इसलिए कि उसे समाज पसंद नहीं करता जो हरकतें आप बचपन में करते हैं। तीसरा दोहा है, रहिमन नसुआ नैन ढरी जिय दुख प्रकट करेई जाहे निकारो गे हते कसन भेद कही देई। अब यहां आप देखें, इस दोहे में रहीम ने आंसुओं के द्वारा मन का दुख प्रकट होने की बात के उदाहरण से घर की बात घर के भीतर ही रखने का संदेश दिया है। इसका अर्थ क्या है? रहीम कहते हैं कि आंखों से आंसू निकलकर व्यक्ति के हृदय के दुख को व्यक्त कर देते हैं, और वे करें भी क्यों नहीं। जब किसी को घर से निकाला जाएगा तो वह घर का भेद तो दूसरों तक पहुंचाएगा ही। यहां देखिए दो अर्थ इसमें स्पष्ट हो रहे हैं। शास्त्रों में मानव देह का वर्णन घर के रूप में किया गया है, जिसके 10 दरवाजे हैं, जिनमें 2 दरवाजे दोनों नेत्र हैं। तो यहाँ पे यह कहा गया है कि अगर आपकी आंखों में आंसू है तब तक तो ठीक है, लेकिन आंखों से बाहर आंसू आते ही वह आपके दुख का भेद दुनिया को बता देता है। किस प्रकार? जिस प्रकार भाई विभीषण को जब रावण ने घर से बाहर निकाला तो उसने अपने लंका का पूरा राज खोल दिया और वहां राम की सभा में बता दिया। कहते भी हैं कि घर का भेदी लंका ढाए। तो यहाँ बड़े ही सूक्ष्म उदाहरण के माध्यम से रचनाकार ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके मन में दुख है तो उसे आंखों में रहने दें, आंसू बनकर उसे ढरकने न दें, क्योंकि दुनिया जो है आंसुओं को पसंद नहीं करती है, वो उसके लिए भी कहानी बनाती है। चौथा दोहा देखते हैं, यह रहीम निज संग ले जन्मत जगत न कोए बैर प्रीति अभ्यास जस होत होत ही होए। अब आप देखें यहाँ पे रहीम ने वैर प्रेम अभ्यास और कीर्ति ये चीजें कोई भी व्यक्ति जन्म से प्राप्त नहीं करता, बल्कि समय के साथ साथ विकसित होती हैं ये चीजें। तो आप जानते हैं कि वैर अर्थात शत्रुता, प्रेम किसी कार्य को करने का कौशल या यश, ये जन्मजात नहीं होते हैं, ये हम धीरे धीरे बढ़ते हैं और इनका जो है विस्तार क्रमशः होता है। जैसे प्रेम का उदाहरण हम ले लेते हैं, किसी के प्रति जो हमारा प्रेम होता है वह धीरे धीरे होता है, उसमें सकारात्मक भाव होना चाहिए, साहचर्य जन्य होना चाहिए, स्वीकार की भावना होनी चाहिए, तब प्रेम धीरे धीरे बढ़ता है। तो यहाँ पे चार चार बातों को उन्होंने एक उदाहरण के माध्यम से प्रस्तुत करने की कोशिश की है। अगला जो दोहा है वह है, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सो बार, रहिमन फिर पोहिए टूटे मुक्ताहार। अब यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है कि जिस प्रकार मोतियों के हार के टूट जाने पर मोतियों को फेंका नहीं जाता, उसी प्रकार बार बार धागे में पिरोकर हार बनाया जाता है। इसी उदाहरण को हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। जो श्रेष्ठ लोग होते हैं वे अपने कुटुंबी संबंधी जो संबंधी होते हैं या मित्र होते हैं, उनके रूठने या नाराज होने पर भी उन्हें बार बार मना लेते हैं, क्योंकि जिस प्रकार अगर माला से मोतियों को फेंक दिया जाए तो वह माला दोबारा नहीं बन सकती है, उसी प्रकार से अगर आपके जो प्रेमी हैं, मित्र हैं, अगर उनके साथ आपने अपना प्रेम नहीं बना के रखा, उनको रूठने पर नहीं मनाया, तो वो हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। तो इस तरह से आप देखें कि कैसे छोटे छोटे उदाहरणों के माध्यम से वे बड़ी बड़ी बातों को बता रहे हैं। अगला है, काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, रहिमन भावर के भय नदी से रावत मोर। यहाँ भी एक उदाहरण के माध्यम से वे बताना चाहते हैं कि काम पड़ने पर कोई व्यक्ति आपके बहुत निकट आ जाता है और काम समाप्त होने पर वो आपसे दूर चला जाता है, या आम जीवन में देखा जाता है। तो वो उदाहरण देते हैं कि जैसे विवाह होने के बाद जो दूल्हा जो सिर पर पहनता है उसे बाद में नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है, क्योंकि उसका अब काम नहीं रह गया, केवल शादी के लिए उसका उपयोग होता है। उसी प्रकार का जो उदाहरण है वो हमें जीवन में भी देखने को मिलता है। वे रहीम नर धन्य है पर उपकारी अंग, बाटन वाले के लगे ज्यों मेहंदी के रंग। अब यहाँ भी आप देखें कि हमारा प्रेम कैसे होना चाहिए। वो कहते हैं कि हमारा प्रेम का रंग इस प्रकार का होना चाहिए जैसे उपकार करने वाले का होता है। हम दूसरे के प्रति उपकार करते हैं तो वो हमेशा जीवित रहता है, वो सजीव रहता है। तो इस प्रकार शिक्षार्थियों, हमने रहीम के कुछ दोहों को यहाँ जानने की कोशिश की है।